ओम शांति। हमारे बीच उपस्थित हैं भ्राता रमेश भाई जी, हम आपसे परिचित हैं ही, फिर भी मैं ये जरूर कहूंगी कि बाबा मम्मा की आप विश्वास पात्र हैं, इसलिए ही साकार बाबा ने आपको इस यज्ञ का ट्रस्टी बनाया। जिनके ऊपर विश्वास होता है उनको ही सदैव ऐसी सेवाओं के लिए चुना जाता है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई तो कहा जाता, लेकिन आप तो एक अनन्य विशेष रत्न हैं जिन्हें भगवान ने कई ऐसे कार्यों के लिए चुना। वर्ल्ड इंडियन स्पिरिचुअल ट्रस्ट के भी आप ट्रस्टी रहे और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी आपने 50 वर्षों से अधिक अपनी पूर्ण सेवाएं समर्पित रीति से कर रहे हैं और आप ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। आर्थिक कानूनी तथा सामान्य प्रशासन भी आप संभालते हैं, साथ साथ आप जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन भी हैं, स्पार्क विंग के भी आप चेयरपर्सन हैं। कई ऐसी आपने किताबें भी लिखी हैं और हर मास अज्ञानामृत में भाई जी का लेख भी पढ़ते हैं, जो भी बहुत प्रेरणादायी होते हैं। और एक बड़े गर्व और नशे की बात है भाई जी के लिए मैं कहूंगी कि साकार बाबा मम्मा जब बॉम्बे में आते थे तो आपके साथ आपके घर में ही रहा करते थे, ये सौभाग्य आपको ही प्राप्त हुआ है। ये बड़े नशे की बात है कि भाई जी का यह भी एक अनुभव है, इसलिए मैं कहूंगी कि हमने नहीं देखा मम्मा बाबा का साकार प्यार, हमने नहीं देखा मम्मा बाबा का साकार प्यार, भाई जी आप कराएंगे साकार माता पिता का साक्षात्कार। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों एवं संस्कारों के धनी यज्ञ रक्षक बाप दादा के विश्वास पात्र भाग्यशाली आत्मा का हम इस सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। और भाई जी से मैं कहूंगी कि बाबा मम्मा की प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखें। भ्राता रमेश भाई जी,
अलौकिक बाबा थे और एक थी मां रूहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक थी मां रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक थी मां रूहानी।
saluda. Om Shanti. इतना विशाल संगठन के अंदर हमारा दैवी परिवार के जो मातृशक्ति जो है, उस मातृशक्ति जो यहाँ उपस्थित है और इतनी बड़ी संख्या में उनका साक्षात्कार होता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि जिस सेंटर पर माताएं ज्यादा आती है वो सेंटर हमेशा ही हरा भरा रहता है। सेंटर को हरा भरा रखने के लिए माताओं को ही बाबा ने निमित्त बनाया हुआ है और माताओं के द्वारा ही ये यज्ञ का कारोबार होता है। दुनिया के अंदर रिजर्वेशन के अंदर भी माताओं को 100% आगे नहीं रखा जाता है। या विश्वविद्यालय के अंदर ये अपने डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हमेशा ही यह विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका एक बहन ही होंगी। इस प्रकार से बहनों के नेतृत्व के अंदर ये कारोबार होना चाहिए और होता रहेगा। ज्ञान का कलश भी आप माताओं की शक्ति के ऊपर, माताओं की जो आपके पास मातृशक्ति जो है, निर्माण करने की शक्ति है, जन्म देने की शक्ति जो है, उसके लिए बाबा ने आपको ही निमंत्रण दिया है। और बाबा ने कहा भी है कि आपके द्वारा ही, दुनिया में भी माना जाता है कि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला गुरु माता होती है। माता ही सिखाती है, माता ही बताती है ये क्या बोलना चाहिए। हमारी सबकी माताएं जो भी है, हम सबको अपनी भाषा भी माताओं ने सिखाई हुई है। तो अपनी माताओं का जो भी है, मैं भी अपना अनुभव करता हूँ। मेरी यह विश्वविद्यालय के संपर्क में भी, मेरी लौकिक माता के संपर्क में के कारण ही आया हुआ था। मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना था। 52 के मई महीने में बहने बॉम्बे में आई हुई थी और आई और उसके 15 दिन के अंदर ही हरि माता जी को ब्रह्मा कुमारी इसका संपर्क हुआ। तब तक मेरी माता जी को थोड़ा डिप्रेशन था क्योंकि मेरे लौकिक पिता ने अचानक हार्ट फेल से शरीर छोड़ा था, उसके कारण उनके ऊपर उसकी गहरी छाप पड़ गई थी और उसके कारण वो डिप्रेशन में रहते थे। मैं 1950 में माताजी का, मेरा पिताजी का शरीर छूटा, तब से हमने देखा कि माताजी हमारी डिप्रेशन में रहती है। उसका वो डिप्रेशन दूर करने के लिए हमने गुरुओं के पास में लेके गया, यात्रा पर लेके गया, सब कुछ किया, परंतु वो डिप्रेशन दूर नहीं होता था। मई 52 में अरे माताजी ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आई होंगी और उसके कारण क्या हो गया कि उनका जो डिप्रेशन जो था वो दूर हो गया। पहले तो हमने समझा कि टेम्पररी फेज होगा, थोड़े दिन के लिए होगा, आप आनंद में रहेंगी, फिर से दुखी हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। परंतु देखा गया माताजी के जीवन से कि एक महीने तक, मैंने बराबर नोट किया, एक महीने तक बराबर ही एकदम सुख शांति से और कोई भी प्रकार की अशांति, दुख की, ज्ञानी की तो उसके फेस पर नहीं थी बातें। तो उसके कारण हमने एक महीने के बाद उनसे पूछा कि आपका ये डिप्रेशन कैसे दूर हो गया। मैं हमने इतना डेढ़ दो साल मेहनत किया, वो डिप्रेशन दूर नहीं हुआ और आपका ये एक महीने के अंदर ये डिप्रेशन कैसे दूर हुआ। मेरी माता जी ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी इस बहने आई हुई है यहाँ। उस दिन मैंने पहली बार ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम सुना, कि ब्रह्मा कुमारी इस बहने जो आई है माउंट आबू से आई है और यहाँ आकर के सिखाती है, राजयोग सिखाती है और राजयोग के अंदर यही सिखाती है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये आप सब जानते हैं, वही बातें मेरी माता जी ने मेरे को बताया कि इस प्रकार के यहाँ पर योग की विधि सिखाते हैं और इस योग की विधि के कारण मेरा जो डिप्रेशन जो था वो दूर हो गया, मैं आनंद में रहती हूँ, सुख शांति से रहती हूँ। तब हमने माता जी को कहा कि ब्रह्मा कुमारी इस बहनों को हमारा आभार, धन्यवाद कहना, कि जो हम प्रयत्न करते थे डिप्रेशन दूर करने का, ये ब्रह्मा कुमारी बहनों ने जादू कर करके एक महीने के पुरुषार्थ के अंदर ही हमारे घर में सुख शांति आनंद के फिर से वो वायुमंडल बना दिया था। मैं सोच रहा था कि ब्रह्मा कुमारी बहने कैसे होगी, क्या होगा, परंतु मन में संकल्प था कि ब्रह्मा कुमारी तो बहनों की संस्था है, बहनों की संस्था में मैं कैसे जाऊं। इतने में 19 सितंबर 1952 के दिन में मेरे पिताजी की मृत्यु तिथि थी, तो मेरे पिताजी की मृत्यु तिथि के टाइम पर भोग लगाना था, तो मेरी माताजी ने मुझे कहा कि आपके पिताजी के याद में उनके लिए भोग लगाया है, गुरुवार का दिन है, भोग है, दोपहर में 12 बजे होता है, आप आओगे? मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाना तो था, तो चांस मिलना चाहिए, ऐसे चांस के बिना कैसे जा सकता हूँ। तो ये चांस मिला भोग का, और इसके कारण भोग के आधार पर ही मेरा पहला ब्रह्मा कुमारी इसके कारोबार में मेरा संपर्क हुआ। इसमें भी विचित्र बात हुई, भोग लग गया, भोग लगने के बाद संदेश ही वापस आई, तो दादी दूसरी बहनों ने समझा कि भोग पूरा हो गया, और भोग उठा रहे थे तब इन्होंने कहा नहीं अभी भोग पूरा नहीं हुआ है, जिस आत्मा के प्रति भोग लगाया है उस आत्मा को पान सुपारी खाने की हैबिट है, तो इसके लिए पान सुपारी लेकर के अलग डिश में ला करके भोग के साथ में रखो और उसके बाद भोग लगाएंगे। तो इसके कारण बहनों ने कहा कि हमें मालूम नहीं है पान क्या होता है, सुपारी क्या होती है, क्योंकि कराची और इसके पहले हैदराबाद में वहां अकेले रहते थे, एकांत में रहते थे। तो मेरे को ही संदेशी बहन ने पूछा कि आप जानते हो आपके पिताजी पान सुपारी खाते तो क्या होता है? मैंने कहा वो तो बहुत कॉमन चीज है, हमारे बॉम्बे में तो गली गली के कॉर्नर पर मिलता है, तो कहा आप जाकर के लेके आओ। मेरी पहली ईश्वरीय सेवा पान सुपारी लेके आने की थी, पान सुपारी लेके आया और उसको धुलाई करके डिश में अलग रख करके फिर संदेशी फिर से भोग लेकर के गई। मेरे मन में उसके कारण एक संकल्प चला कि मेरे पिताजी को कोई ऐसी तो हैबिट थी नहीं, पान सुपारी तो बहुत कॉमन चीज है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है भोजनांते तांबुलम भक्ष्य, इस प्रकार से होता है, तो फिर मेरी माताजी ने ये क्यों बता दिया? तो माताजी को मेरे रात को घर पे कहा कि आपने मेरे पिताजी की ये छोटी सी बात को क्यों बहनों को बता दिया? तो माताजी ने कहा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, मैंने बताया नहीं है। तो मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई, इसका मतलब तो ये है कि बहनें बहुत होशियार है, मेरी माताजी के मन से मेरे पिताजी के बारे में क्या क्या बातें है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जान लिया। तो मेरे को मन में संकल्प चला ये बहनें कैसे चलती है। तो इस प्रकार से कारोबार होता रहा, मिलता रहा, और इतने में 1953 में बाबा को बॉम्बे लाया गया था, तब से बाबा का उसके पहले 52 के जून जुलाई महीने में मातेश्वरी जी बॉम्बे आए थे, श्याम निवास जो है उधर श्याम निवास के अंदर किसी के फ्लैट में मामा को ठहराया था और मामा वहाँ मिली थी। मैंने पहली बार मातेश्वरी जी को देखा, मातेश्वरी जी को देख करके मैं सोच में पड़ गया कि ये सिंधी माता है, सिंधी बहन है या पारसी बहन है, क्योंकि मम्मा जो साड़ी पहनती थी, आप जो 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 बॉम्बे के रहने वाले होंगे जिन्होंने पारसी बहनों को साड़ी पहने वो देखा होगा, साड़ी के और बालों जो ऐसा लंबा होता है, पिक्यूलियर स्टाइल की पारसी बहनों की साड़ी पहनने की स्टाइल होती है, तो मम्मा वो साड़ी पहनती थी, लंबा लंबी चौड़ी आगे थी, पारसी स्टाइल थी। मैंने मेरी माताजी को पूछा ये मातेश्वरी आपकी जो है वो पारसी है या सिंधी है? इन्होंने बताया कि नहीं वो तो सिंधी है। तो मैंने कहा ये पारसी स्टाइल की साड़ी क्यों पहनती है? तो माताजी ने बताया कि वो बॉम्बे में पढ़ी लिखी थी, बॉम्बे में सेंट टेरेसा स्कूल जो है वहां पर पढ़ी लिखी थी और वो स्कूल जो है वो पारसी लोगों की स्कूल है। पारसी लोगों की स्कूल के अंदर पारसी टीचर्स भी कैसे घूमते फिरते, साड़ियां पहनते, कपड़े कैसे पहनते, उसी प्रकार से मातेश्वरी जी जो भी ये पारसी स्टाइल की साड़ी पहनना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से मातेश्वरी जी को पहली बार देखा तो मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि ये पारसी है या सिंधी बहन है। फिर तो संपर्क नहीं रहा। 53 के अंदर मई जून महीने में बाबा को बॉम्बे लाया गया था। अबू से बाबा का किडनी का ऑपरेशन हुआ था, किडनी में स्टोन था उसका ऑपरेशन। तो मेरी माता जी ने मुझे बताया कि ब्रह्मा कुमारी जिसके मुख्य संचालक ब्रह्मा बाबा जो है आए हुए है अबू से और उनको ऑपरेशन कर किया हुआ है। ऑपरेशन के लिए बॉम्बे में एक हरकिशन दास हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उनको रखा हुआ है। आप चलोगे तो मेरी इच्छा तो थी कि हम भी ब्रह्मा बाबा को देखे तो सही, मिले तो सही, इनका कारोबार क्या है, कैसे कारोबार चलता है। मैंने कहा मैं जरूर चलूंगा। तो इस प्रकार से पहली बार ब्रह्मा बाबा को देखा। इस प्रकार से कनेक्शन पहला ब्रह्मा बाबा से हॉस्पिटल के बिस्तर पर हुआ। मैंने जब ब्रह्मा बाबा को पहली बार देखा तो गौतम बुद्ध का एक मूर्ति हमने देखी थी अजंता एलोरा के केव्स बॉम्बे से 200-250 किलोमीटर दूर है। वहां पर अजंता एलोरा में एलोरा के केव्स में गौतम बुद्ध का एक स्टेच्यू है, गौतम बुद्ध ऑन दी रॉक्स पर पत्थर के ऊपर सोया हुआ गौतम बुद्ध है। उसकी मुख की आकृति जो है एक धर्म स्थापक की आकृति कैसे होती है इस प्रकार की थी। और बाबा को देखने से बाबा की भी आकृति शारीरिक अर्थात मुख की आकृति एक धर्म स्थापक जैसी लगी। तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन मेरे मन में आया कि देखो एक धर्म स्थापक के रूप में नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बनने वाला इसका जो सामुद्रिक लक्षण जो होते हैं वो भी उस प्रकार के होने चाहिए। मैं जब बाबा से देखा, बाबा बिस्तर पर सोए हुए थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा आपका ऑपरेशन हुआ है? तो बाबा ने कहा नहीं मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैंने दूसरी बार पूछा कि नहीं नहीं आपका ऑपरेशन हुआ है? तो बाबा ने कहा नहीं मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। तीसरी बार मैंने कहा आपका ऑपरेशन हुआ है? बाबा ने तीसरी बार भाई फोर्सफुली कहा मेरा ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। तो मैंने मेरी माताजी को पूछा कि आप तो कहते थे कि ब्रह्मा बाबा का ऑपरेशन हुआ है और उसी कारण तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ, इसी कारण तो ब्रह्मा बाबा हॉस्पिटल में है, और अब वो तो कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। तो मेरी माताजी भी थोड़ी विचार में पड़ गई और इन्होंने बाबा को पूछा बाबा आपका ऑपरेशन तो हुआ था, आप ना कैसे कहते? तो बाबा ने समझा कि ये पहली हो गई है, पहली के कारण उलझन हो गई है, तो इसके कारण उलझन को दूर करने के लिए बाबा ने मेरी माताजी को कहा बच्ची ऑपरेशन हुआ है परंतु मेरा नहीं हुआ है, मेरे शरीर का हुआ है, मैं आत्मा अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, जो भी दुख सुख आदि जो भी अनुभव जो होता है वो शरीर के द्वारा होता है। और उस प्रकार से ज्ञान का पहला बीज मेरे अंदर बाबा ने डाला कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के संतान हूँ, मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ, दुख सुख का जो अनुभव जो होता है, दुख की और सुख की अनुभूति जो होती है इंद्रियों के द्वारा होता है और इंद्रियां तो शरीर के साथ में होते हैं। तो इस प्रकार से पौना घंटा घंटा बाबा ने मुरली चलाई और ज्ञान का बीज डाला कि आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपने को आप बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे अंदर ज्ञान का बीज भी बाबा ने डाला इसके कारण तो मेरा कनेक्शन जो है संबंध बन गया। फिर तो बाबा के साथ कनेक्शन रहा, बाबा जहाँ रहे हुए थे वहाँ भी मिलना हुआ। फिर 57 की बात है, 57 में मेरी माताजी ने मुझे कहा कि मेरी इच्छा है हम ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को बॉम्बे बुलावे, हम निमंत्रण दे। मैंने कहा भले निमंत्रण दो। मेरे माताजी ने मेरे को कहा उसका निमंत्रण का अर्थ समझता है? मैंने कहा मैं अच्छी रीत से समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आबू में पांडव भवन से निकलेंगे, आबू बॉम्बे में आएंगे, बॉम्बे में आकर के रहेंगे और फिर वापस जाकर के पांडव भवन के प्रांगण में आंगन में कार में उतरेंगे, तब तक का खर्चा जो है हमें देना होगा। तो हम कर सकते हैं? मैंने कहा जरूर, आपकी इच्छा जो भी होगी हम परिपूर्ण करने के लिए तैयार है। तो फिर बाबा ने बाबा को निमंत्रण दिया, हमारी माता जी ने, तो बाबा ने मना रिजेक्ट कर दिया कि मैं बच्चे के निमंत्रण पर नहीं आऊंगा, मैं बच्चे के निमंत्रण पर आऊंगा, बच्चा रमेश अगर मुझे निमंत्रण देता है तो मैं आऊंगा। तो फिर मेरे माता जी ने मेरे को कहा कि आपको निमंत्रण देना होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाबा को निमंत्रण भेजा, बाबा का टेलीग्राम आया कि 4.5 महीना के लिए जो फ्लैट बुक करो, मैं 4 महीना बॉम्बे रहूंगा। तो फिर बाबा और मम्मा आए, हमारी गाड़ी में ही बैठ करके मैं बाबा को स्टेशन से जिस मकान में बाबा के लिए फ्लैट रखा था वहां तक लेके गया। मैं गाड़ी चलाता था, मेरे बाजू में रमा बाबा बैठे थे और पीछे में मेरी माता जी और मातेश्वरी जी बैठे हुए थे। इस प्रकार से संबंध की शुरुआत हुई। बाबा ने हमारी बहनों ने हमको कहा कि बाबा को रोज सुबह मॉर्निंग में घूमने को लेके जाने का है, वहाँ हैंगिंग गार्डन है, वहाँ पर लेके जा करके बाबा को फ्रेश कराना है। बाबा के नहीं तो बुद्धि बहुत चलती है, उसके कारण बाबा का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बाबा की शुगर बढ़ जाती है, इसके कारण चेंज ऑफ एयर और चेंज ऑफ वर्क करने के लिए इनको लेके जाने का है। हमने कहा जरूर मैं लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार से 4.5 महीना बाबा को रोज सुबह बॉम्बे के हैंगिंग गार्डन में, वहाँ कार में लेके जाता था, वहाँ पैदल करते थे, पैदल करते करते सारी बातें बाबा से लेन देन करते थे। और इस प्रकार से विशेष संपर्क में आने का ये 4.5 महीने का जो निमंत्रण जो था, वो निमंत्रण के कारण 4.5 महीने तक बाबा का संपर्क रहा। संपर्क के साथ साथ जो भी कहो आप, लेन देन की बातें कहो, विचार सागर मंथन की बातें करो, संस्था के इतिहास की बातें करो, इस प्रकार से बाबा से पूछता रहता था और बाबा को अनेक प्रकार की बातें पूछी, तो इसलिए बाबा हर एक बात का जवाब भी देते थे। तो इस प्रकार से संपर्क जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और 4.5 महीने तक का पूरा ही अनुभव बाबा के साथ का रहने का हो गया। फिर आगे बढ़ता रहा, 59 की बात है, 59 में बाबा बॉम्बे में आए हुए थे। उस जमाने में उसी दिनों में हम लोग भी पहले गीता पाठशाला में जाता था, गीता पाठशाला में जाता था तो वहाँ पर पतंजलि योग सिखाते थे। हर मंगलवार को सुबह 1 घंटा पतंजलि योग सिखाते थे। तो पतंजलि योग सिखाने के लिए क्लासेस रखते थे तो हमारे पांडुरंग शास्त्री जो है उसके नियम था कि हम पोस्ट ग्रेजुएट और पढ़े लिखे लोग जो है वो पतंजलि योग सीखने के लिए आ गए। तो हम जाने लगे और इसके आधार पर पतंजलि योग का योग दर्शन करने लगे। उषा भी उसी क्लास में आती थी और वो भी योग करती थी। उषा ने एक श्री कृष्ण का एक चित्र था प्रेम वाला, उसको रखा था और सुबह 4 बजे उठ करके योग बाबा का मतलब जो श्री कृष्ण का चित्र था वो चित्र के साथ योग करती थी। तो तब एक अजीब सी बात हो गई कि दुनिया अभी आज तक हमारे कोई भी दैवी परिवार के मेंबरों के अंदर सभ्यों के अंदर नहीं हुई है। वो अपने घर के फ्लैट के अंदर किचन के अंदर बैठ करके योग करती थी, क्योंकि बाकी तो कमरों में तो सब सोए हुए होते हैं। तो करती थी तो एक चोर आया और चोर के पास बैटरी थी और बैटरी के द्वारा प्रकाश वो चोर डालता था प्रकाश की रोशनी वो श्री कृष्ण के चित्र के ऊपर, और चित्र का श्री कृष्ण का चित्र गायब हो जाता था और उसके बदले में दूसरा किसी का चित्र आता था। तो पहले दिन तो ऐसा देखा तो उषा डर गई और सो गई कि एक तो चोर आया चोर आया चोर आया, अब मैं किसको बुलाऊं किसको बुलाऊं, इसलिए वो तो वहीं पर बिस्तर के ऊपर सो गई। दूसरे दिन सुबह फिर 4 बजे वही बात रिपीट हुई, फिर से वो चोर आया। चोर उठा था कुछ नहीं था, कोई चोरी भी नहीं करता था, खाली टॉर्च के द्वारा उधर चित्र के ऊपर ही रोशनी डालता था। इस प्रकार से 5-7 दिन तक चलता रहा। तो उषा सोचने लगी ये क्या है, ये चोर आता तो है परंतु कुछ लेता नहीं है, चोरी नहीं करता है, कुछ नहीं बोलता है। तो ये भी एक हमारा अनुभव रहा, हाँ, कि बाबा को उषा को और हम लोग को ज्ञान में लाने के लिए बाबा को चोर का भी रूप लेना पड़ा। ऐसा रूप अनुभव तो किसी का नहीं हुआ होगा कि बाबा चोर बन करके रोशनी डाल करके उषा को कार्यान्वित किया। तो उषा सोचने लगी कि क्या है, तो इसलिए हमारे पांडुरंग शास्त्री के पास गई और इनको बात बताई। पांडुरंग शास्त्री ने कहा, गुरुवार के दिन गई थी, तो पांडुरंग शास्त्री ने कहा तुम शनिवार को आना, तुम्हारी इन बातों के ऊपर मैं विचार करूंगा और फिर आगे बताऊंगा। फिर शनिवार को गई उषा, तो पांडुरंग शास्त्री ने कहा कि ये भगवान का तुमको संकेत है कि तुम जिस व्यक्ति के चित्र तुमको दिखाया जाता है उस व्यक्ति के साथ शादी करो, तो शादी तुम उनके साथ करेंगी तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। उषा ने कहा मैं क्या जानू, मैं तो नहीं समझती हूँ क्या हो सकता है, और इसमें ऐसी बात, इस बात से परमात्मा मुझे संदेश देता है वो भी मैं कैसे मानू। फिर पांडुरंग शास्त्री ने कहा कि मैं देखता हूँ। फिर पांडुरंग शास्त्री ने उषा के मामा के साथ बात किया, उस प्रकार से कर करके हमारा शादी का नक्की हुआ। ये भी आप सबको खुशी की बात बताऊं, विचित्र बात बताऊं कि दुनिया में जो शादी होती है, आप में यहाँ कई माताएं जो बैठी हुई है सब शादी शुदा ही बैठी हुई है, उन सबको मालूम है शादी होती है यहाँ तो एंगेजमेंट के लिए जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके कहने से होता है, या तो लव मैरिज होता है या तो अरेंज मैरिज होता है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज आप सबका अनुभव भी यही है, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं होता है। और हमारे केस में ये हो गया, इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ बाबा मम्मा के कारण, बाबा मम्मा के कारण मेरा जो मैरिज जो हुआ वो डिवाइन मैरिज हुआ। ये एक विचित्र बात हुई, शास्त्रों में भी इसका एक रूप है, उषा और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है श्री कृष्ण का बेटा था और उषा जो है वो एक बाणासुर करके राक्षस था उसकी बेटी थी। वो बेटी भगवान को ही याद करती थी, तो इसके कारण बाणासुर ने कहा कि तुम भगवान को याद नहीं करो, तो इसके कारण उसको एक महल के अंदर कैदी करके रखा था। उनकी एक दासी थी, वो बहुरूपी थी। तो एक दिन उषा को स्वप्न आया, सपने में किसी एक राजकुमार को देखा, तो उसने बताया वो दासी को। दासी ने उनको चित्र अलग अलग बताते बताते अनिरुद्ध का चित्र देखा, और अनिरुद्ध का चित्र देख करके ही उसने कहा कि हाँ यही मेरा सपनों का राजकुमार है। तो मायावी दासी जो है अनिरुद्ध को लेके आई और अनिरुद्ध और उषा साथ में रहे। इस प्रकार की बात जो है हमारा ये अनुभव जो है वो थोड़ा ट्विस्ट हो करके, जैसे बाबा कहते शास्त्रों में आटे में लून समान थोड़ा थोड़ा है, इस प्रकार से हमारा जीवन का अनुभव बाबा के ज्ञान के आधार का अनुभव जो है वो शास्त्रों में कहानी के रूप में चला गया है। फिर तो बाबा फिर हमारी शादी हुई और शादी के बाद रविवार को शादी हुई और सोमवार को ब्रह्मा बाबा बॉम्बे में थे, तो हमारी माता जी हम दोनों को ब्रह्मा बाबा के पास लेके गई। ब्रह्मा बाबा को देखते ही उषा ने मेरे को कहा ये तो वही चोर है, वो चोर है जो मेरे घर पे आता था और 5-7 दिन तक रोज आता है और रोज रोशनी डालता था, ये चोर है। मैंने कहा नहीं नहीं ये चोर नहीं है, ये तो ब्रह्मा बाबा है। तो क्या आपको क्या मालूम, दिन में ब्रह्मा बाबा का काम करता है, रात को चोर का काम करता है। ऐसा उषा ने मेरे को समझाया, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, ये चोर नहीं है, दिन रात इसी ईश्वरीय सेवा के अंदर लगे हुए हैं। तो फिर तो चर्चा हुई, बातें हुई, लेन देन हुई, इस प्रकार से उषा की जो भ्रांति जो है कि चोर था वो निकल गया। परंतु एक बात है, शास्त्रों में भी गायन है ना, हरिधारा रूप से हजार क्या नाम है गंगोत्री रखी, मथुरा में ये किया, इधर ये किया, इधर ये किया। इस प्रकार से परमात्मा के भी अनेक रूप है, और उस एक रूप के अंदर हमारा जीवन का अनुभव जो है कि परमात्मा ने चोर का भी रूप हम सबको, हमारे जीवन को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए चोर का रूप लिया। ये भी एक विचित्र है, ऐसा अनुभव दैवी परिवार में और किसी को नहीं है, इस प्रकार का हमारा अनुभव रहा। बाद में तो बाबा के साथ बातचीत होती रही, बाबा ने निमंत्रण दिया आबू आने का, और इसलिए हम सब आबू आए। तब तक हम बाबा की बात को, बाबा को मानते, मैं मानता नहीं था बाबा को, मानता माना बाबा को अपना पिता के रूप में नहीं मानता था, परंतु ब्रह्मा बाबा को मैं अपना माता जी का गुरु के रूप में मानता था। आप जानते हैं शास्त्रों में भी गुरु की इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा रूप होता है, बहुत बड़ा आज्ञाकारी जीवन होता है उनका, और उनकी आज्ञा पर चलने से जीवन में सुख शांति आनंद आ सकता है। तो उसी के हिसाब से बाबा को मैं 52 से 61 की मई तक बाबा को मेरे माता जी का गुरु के रूप में मानता था। आबू में आया, आबू में भी 15 दिन हम लोग रहे, बाबा के साथ खेलकूद किया, क्रिकेट खेले, सब कुछ करते थे बाबा के साथ, परंतु माता जी का गुरु है उस प्रकार से मान करके चलता था। जाने के दिन पर पहले बाबा ऊपर पांडव भवन के पिछले गेट से, वहाँ वटवृक्ष है, वटवृक्ष के तो नीचे तक आते थे बाबा, वटवृक्ष के नीचे आते थे विदाई देने के लिए। तो हम लोगों को भी विदाई देने के लिए बाबा आए, तो बाबा की आंखों में पानी भर गया, उसको देख करके हम लोगों को भी तीर लगा कि देखो ये व्यक्ति कितनी महान है। उस दिन के सुबह की मुरली जो है वो मोह जीत के ऊपर है, मोह जीत के ऊपर मुरली चलाने के बाद भी मोह क्या है और प्रेम क्या है, बाबा के पास दोनों के बीच में प्रेम और मोह के बीच में जो अंतर है, वो अंतर का डिफरेंस उनको सच्चाई से मालूम है। तो इस प्रकार से बाबा का अनुभव जो हुआ, और उसके कारण बॉम्बे जाकर के हमने योग करना सीखा, और योग करते करते बाबा का हम बन गए। इस प्रकार से मई 1951 से हम बाबा के बन गए, मतलब 52 से 61 की मई तक हम सहयोगी रहा, और सहयोगी के बाद मई 51 से राजयोगी बने, और इसके कारण परिणाम रूप घर में सुख शांति हो गई। एक दूसरी एक अच्छी बात सुना दूं आपको, बहने ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर गांव में गई थी, थोड़ी बहने दिल्ली के साइड में गई, थोड़ी बहने बॉम्बे में आई। तो मेरी माता जी पहले बाबा को संपर्क में आई थी, और उसके कारण 52 के अगस्त सितंबर के अंदर ही माता जी और मेरी दो बहने थी, इन तीन पहली बार आबू में आए। बाबा ने उनको कहा कि ये जो बहने सेवा ईश्वरीय सेवा के लिए निकली हुई है, इन्होंने जो सेवा किया हुआ है, तो सेवा का पहला पहला फल ये शांता माता और उसके बहने दोनों बच्ची आए। इस प्रकार से ये भी आपके लिए, आप माताओं के लिए गौरव की बात है कि मेरी माता जी जो है वो पहला पहला विजिटर आबू के अंदर, पांडव भवन के अंदर एक विजिटर के रूप में आने का सौभाग्य एक माता को मिला। तो यही आप माताओं की शक्ति की इम्पोर्टेंस है। तो इस प्रकार से बाबा के साथ संपर्क हुआ, बढ़ता रहा, बाबा के साथ लेन देन भी होती रही, पत्र व्यवहार भी करते रहे। बाबा का बनने के बाद बाबा ने काम भी दिया, आप समझेंगे ईश्वरीय सेवा का काम क्या दिया होगा बाबा ने हमको। बाबा ने पत्र लिखा कि बच्चे 500 प्लास्टिक की बाल्टियां मधुबन खरीद करके भेजो, 500 बाल्टियां प्लास्टिक की। उस जमाने तब तक क्या था, जो भी पार्टियां आती थी हर एक पार्टी के पास एक प्लास्टिक की बाल्टी होती थी और बिस्तर होता था, सोने के लिए बिस्तर और काम स्नान पानी आदि करने के लिए बाल्टी होती थी। बाल्टी क्योंकि यज्ञ में बाल्टियां नहीं थी, यज्ञ में जो रहते थे उनके लिए थी, बाकी जो मेहमान के रूप में आते थे उनके लिए बाल्टियों की जरूरत पड़ती थी, मेहमान सब अपनी बाल्टियां लेकर के आते थे। तो पहला कारोबार हमको बॉम्बे में हम बाबा का बन गया। उसके बाद बाबा ने पहला कारोबार दिया, 500 बाल्टियां खरीद करके भेजो। अब मुझे अनुभव नहीं था बाल्टियां कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है और क्या रेट पर मिलती है, और फिर बॉम्बे से आबू कैसे जाएगी। तो मेरा संपर्क विश्व किशोर दादा के साथ था, मैंने विश्व किशोर दादा को पत्र लिखा कि बाल्टियां आबू कैसे जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक न्यू राजमणि ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वहाँ जाकर के उनको बाल्टियां दे दो तो बाल्टियां 2-4 दिन के अंदर आबू आ जाएंगी। तो इस प्रकार से सेवा के फील्ड में सेवा करने का अनुभव जो है विचित्र रूप में मिला, 500 बाल्टियां खरीदने का। आप सब विचित्र समझेंगे कि ऐसा अनुभव कैसे होगा, परंतु ये हकीकत है कि 500 बाल्टियों के द्वारा मेरा ईश्वरीय सेवा का कारोबार शुरू हुआ। बाबा काम कर चलाते थे, सिखाते थे, सब प्रकार की बातें सिखाते थे। एक बात बता दूं, एक बार बाबा 65 में बॉम्बे में थे, बीकन्स में बॉम्बे ठहरे हुए थे बाबा, और उस टाइम पर मधुबन से बड़ी दीदी ने पत्र लिखा कि अभी बारिश आने वाली है, बारिश की सीजन आने वाली है, तो बारिश की सीजन आने वाली है तो इसके पहले मजदूरों के लिए छाता की जरूरत है, तो थोड़ी छाता 8-10 छाता खरीद करके भेजो। तो बाबा ने परीक्षा लिया, सारे क्लास के बीच में कहा कि मधुबन से पत्र आया हुआ है, मजदूरों के लिए छाता चाहिए। तो बाबा परीक्षा करते हैं कि खरीदी की शक्ति कैसी है, खरीदने की ताकत कैसे है, खरीदने का अनुभव किसको है, वो जानना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा, तो मैंने तो बाबा को कहा क्लास पूरा हुआ कि कल तो 100-125 मूल्य आपके पास छाता आ जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, बाबा जानता है। तब बाबा के मुख से पहली बार सुना, गुर जाने गुर की गोत्री जाने, इस प्रकार से कहा। देखना 100-125 लोगों ने सुना तो है, छाता चाहिए छाता चाहिए छाता चाहिए, तो देखना कितनी छाताएं आती है। दूसरे दिन सुबह क्लास के अंदर बाबा ने पूछा, छाता लाए हो तो हाथ खड़ा करो। 7-8 भाइयों ने बहनों ने ही छाता लाया था, 100-125 में से 7-8 लोगों ने लाया, बाकी किसी ने लाया भी नहीं था। फिर बाबा ने हरेक से पूछने शुरू किया। एक भाई ने फैंसी छाता थी प्लास्टिक की हैंडल की छोटी सी फोल्डिंग छाता थी, तो बाबा ने उसको पूछा कितने रुपए की लाया है, तो कहा 175 रुपीज की मैं छाता लाया हूँ। तो बाबा ने कहा इतनी महंगी क्यों लाया है, तो कहा बाबा आपके लिए लाया हूँ, आपको ये चाहिए तो आपके जैसे महान विभूति जो है इसके लिए तो अच्छे में अच्छी छाता चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे छाता मेरे लिए नहीं चाहिए, पर तुम्हारा मजदूर जो होते हैं आबू में पांडव भवन में काम करने वाले उनके लिए चाहिए। इस प्रकार से 5-7 लोगों ने बताया। इसमें चिल्ले हमारे मासी का लड़का है, कजिन ब्रदर है, उसने वो लेके आया था छाता, 8 रुपए की लेके आया था वो। तो ये जो भाई जो है पहला नंबर का 175 की छाता लेके आया, और हमारा मधु भाई जो है 8 रुपए की लेके आया। बाबा ने उनसे पूछा तुम क्यों इतने ऐसी छाता लेके आए हो, तो कहा बाबा आपको नहीं चाहिए मजदूरों को चाहिए। मजदूरों को जो चाहिए छाता चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए। प्लास्टिक का हैंडल होगा तो टूट जाएगा, छाता टूट जाएगी, फोल्डिंग और मजदूरों को फोल्डिंग छाता की क्या जरूरत है, उनकी तो छाता की साइज बड़ी होनी चाहिए ताकि उसके सिर पर जो सामान होगा वजन होगा उसको बारिश के टाइम पर उस छाता से उसके प्रोटेक्शन कर सके। तब बाबा ने कहा कि देखो बच्चों को ये भी अक्ल होनी चाहिए, भावनाओं में आकर के कारोबार नहीं करना चाहिए। परंतु बाबा ने वो सिखाया कि भावनाओं के आधार पर नहीं परंतु वास्तविकता के आधार पर कारोबार करना चाहिए। इस प्रकार से वास्तविकता के आधार पर कारोबार करने का बाबा ने सिखाया। अप्रैल 64 में मालूम पड़ा, कानपुर में मातेश्वरी जी थे, मातेश्वरी जी के बारे में मालूम पड़ा, मातेश्वरी जी को शायद कैंसर हो सकता है और इसके कारण बॉम्बे में ही उस टाइम पर एक हॉस्पिटल थी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, तो वहां पर भेजने का था। बाबा ने कहा कि मम्मा तो कानपुर से आबू आ जावे, तो बाद में त्रिलोकचंद भाई करके वहां के थे उन्होंने मुझे कहा बाबा तो मातेश्वरी जी को कानपुर से आबू मंगाते हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे होगा, मैंने बाबा को फोन किया कि बाबा मातेश्वरी जी को तो डॉक्टर की जरूरत होती है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको तो यहाँ ही बुलाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि तेरी मम्मा रहेंगी कहाँ, तो हमने कहा कि कहाँ रहेंगी कहाँ, क्योंकि जैसे घर में किसी माता बीमार होती है तो परिवार वाले एडजस्ट कर लेते हैं ना, तो हमारा घर भी पहले 62-63 में मातेश्वरी जी 8 मास हमारे घर में बॉम्बे रही थी। उस टाइम हमारे पास 2 घर थे, एक पुराना था, हम पुराने घर में चले गए तो मातेश्वरी जी को नया घर दे दिया था। अब 64 में हमारा पुराना घर तो निकल बेच दिया था, तो इसके कारण हमारे घर में मातेश्वरी जी आई रही और ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर पेमास्टर के द्वारा ऑपरेशन हुआ। मम्मा को गांठ को देख करके कहा डॉक्टर ने ये कैंसर की गांठ है, हमने डॉक्टर को कहा कि ऐसा कैसे आप कह सकते हो ये कैंसर है, आपको तो बायोप्सी करानी चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए, आपको मालूम रहे ये हमारे संस्था की मुख्य बहन है, हमारा संस्था का कारोबार करने के लिए नियमित बहन है और इसके बारे में आप ऐसा बोलते हो कैसे हो सकता है। डॉक्टर पेमास्टर ने कहा कि मेरा ये 40 वर्ष का अनुभव है कि ऐसी गांठ जो होती है, ऐसा जो आकृति होती है गांठ की, वो कैंसर की होती है। फिर भी उसने कहा ऑपरेशन के पहले हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद ही ऑपरेशन करेंगे। तो इस प्रकार से मम्मा का बॉम्बे में ऑपरेशन हुआ। अभी भी मुझे वो दिन याद आता है, मम्मा को अपने कमरे से ऑपरेशन थिएटर में ले जाना था, दादा विश्व किशोर जो ऑपरेशन का जो स्ट्रेचर था उसको आगे से खींचते थे, मैं पीछे से धक्का मारता था और इस प्रकार से हम बाबा मतलब मम्मा को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, विश्व किशोर दादा और मैं, और ऑपरेशन मम्मा का हो गया और 15 दिन मम्मा को बॉम्बे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो मम्मा के साथ भी इसके कारण बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध हुआ, पहले भी 8 मास रहे थे हमारे घर में, 8 मास रहे तो रोज रात को हम घर में साथ में भोजन करते थे, ये भी एक हमारा सौभाग्य था कि 8 मास तक मातेश्वरी जी के साथ रोज रात का भोजन मातेश्वरी जी के साथ करते थे, मातेश्वरी जी से सवाल लेन देन करते थे, इस प्रकार से घनिष्ठ संबंध में आते रहे। तो ये भी हमारा एक सौभाग्य है कि हमारे बड़े जो है बड़ों के साथ संपर्क में आने के लिए कोई न कोई निमित्त कारण बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कुमार का दादी है, दादी प्रकाशमणि जो है, उनके साथ भी वो बॉम्बे में उनको हमने बुलाया था प्रदर्शनी के चित्र बनाने के लिए, उनको माइग्रेन का बीमारी थी, माइग्रेन माने आधा शीशी का, आधा शरीर सिर दुखेगा आधा नहीं दुखेगा, इस प्रकार की माइग्रेन की बीमारी थी, आधा शीशी की बीमारी थी। और उसके कारण कुमार का दादी को वॉमिटिंग बहुत होते थे। हमारे घर पे सेंटर में तो रह करके वॉमिटिंग आदि कैसे हो सकती है, इसलिए हमारे घर पे आ जाते थे। इस प्रकार से 63 से 68 तक बॉम्बे में गांधीवी सेंटर के इंचार्ज के रूप में जान कुमार का दादी रही, और हर महीने दो महीने में तीन चार दिन के लिए उनको माइग्रेन का अटैक आता था और हमारे घर पे आते थे, और उसके कारण माता अपने दादी के साथ भी घरेलू संबंध के रूप में कारोबार करने का मौका मिला। इस प्रकार से रामानुसार कहो जो भी कहो कि बाबा मम्मा के साथ संपर्क में विशेष कारोबार के अंदर आने का चांस मिला। मैं बाबा से लेन पत्र के भी लेन देन करता था, आता रहता था। आप सबको जानकर के खुशी होगी, 64 में मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी, आप जानते हैं 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, और उस दिन लोग जो है वो पतंग उड़ाते हैं। मैं यहाँ था, मधुबन में था। बाबा ने कहा बच्चे आज 14 जनवरी है, 14 जनवरी आप लोग क्या करते हो? मैंने बाबा को कहा बाबा हम तो 14 जनवरी को पतंग उड़ाते हैं आकाश में। तो बाबा ने उसी टाइम पर विश्व रतन दादा को कहा कि जाओ बच्चे, जा बच्चा थोड़े पतंग लेके आओ, धागा लेके आओ। तो बाबा ने फिर पतंग, हम लोग बाबा मम्मा और हम उषा ये सब हिस्ट्री हॉल की छत पर गए, और हिस्ट्री हॉल की छत पर जाकर के बाबा के साथ पतंग भी उड़ाया। बाबा के साथ खेलने करने के लिए भी बैडमिंटन भी बाबा बहुत अच्छा खेलते थे, बाबा क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे। बाबा वो जो चोर गुजराती में हम कहते हैं सोकटा बाजी, वो भी बहुत अच्छी रीति से खेलते थे। इस प्रकार से बाबा के साथ जैसे लौकिक दुनिया के अंदर माँ बाप के साथ रहने का और लेन देन करने का अनुभव होता है, अभ्यास होता है, इस प्रकार से अनुभव होता रहा, अभ्यास होता रहा, और बाबा के साथ संपर्क में आने का प्रोग्राम बनता रहा। मैं बाबा को कहता रहता था कि बाबा आपको मकानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दादा विश्व किशोर के नाम पर मकान था अपना पांडव भवन मकान जो था ऊपर, आप जानते हैं पांडव भवन, वो पांडव भवन दादा विश्व किशोर के नाम पर था, बीटी कृपलानी, भेरूमल टिकमदास कृपलानी। तो मैंने कहा बाबा इनके नाम पर है, इनके नाम से दूसरे के नाम पर करने के टाइम पर स्टैम्प ड्यूटी लगेंगे, सब कुछ होगा, इसके बदले में एक संस्था बना लेते हैं और संस्था के नाम पर संपत्ति ले लेते हैं, तो फिर ये हर घड़ी हर समय पर स्टैम्प ड्यूटी लगाने का खर्च नहीं होगा, और शाश्वत हो गया मकान, शाश्वत व्यक्ति के नाम पर हो जाएगा। इसके बारे में 62 से 68 तक 6 साल तक बाबा के साथ पत्र व्यवहार करता रहा, पत्रों की लेन देन करता रहा। उसमें बीच में आप सब जानते हैं मातेश्वरी जी ने शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त हो गए, मातेश्वरी जी अव्यक्त हो गए। तो उसके बाद मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा अभी संस्था के मुख्य संचालिका कौन है, उसको आपको नियुक्त करना पड़ेगा। अपन का मैं टाइम पर नियुक्त कर दूंगा, और टाइम पर नियुक्त कर दूंगा ऐसे कहा करके मातेश्वरी जी ने तो 65 में शरीर छोड़ा था, अव्यक्त बन गए थे। अप्रैल 1966 के दिन बाबा, उस जमाने में तो लिथो होती थी मुरली, लिथो में आधा पेज के अंदर बाबा ने पत्र लिखा, अपॉइंटमेंट लिखी कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा श्री बाबा के आज्ञा अनुसार स्थापना यज्ञ की किया हुआ है, मातेश्वरी जी ने अभी शरीर छोड़ा है, तो उसके जगह पर मुख्य संचालिका के रूप में दादी प्रकाशमणि और मुख्य सह संचालिका के रूप में दीदी मनोहिनी की नियुक्त करता हूँ। और नियुक्त करने के बाद बाबा ने मेरे को पत्र लिखा कि बच्चे तेरी जो इच्छा थी इस संस्था का मुख्य संचालिका के रूप में कोई होना चाहिए, किसी की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, तो मैंने कर दिया है, और ये करके मैंने जो लिखा हुआ है उसकी कॉपी आपको भेजता हूँ, आप संभाल करके रखना। तो इस प्रकार से दादी प्रकाशमणि मुख्य संचालिका के रूप में 66 के अप्रैल से उसकी नियुक्ति हुई। और तो फिर तो आप जानते हैं कारोबार जो हुआ, 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हो गए और उसके बाद कारोबार के अंदर दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी के द्वारा कारोबार हुआ। बहनों के द्वारा ही कारोबार जो होता है बहुत अच्छा होता है, और इसके कारण बाबा ने बहनों को ही आगे रखा और इसके कारण कारोबार बहनों के द्वारा ही हुआ। तो ये भी एक खूबी की बात है कि यज्ञ के अंदर बाबा का, दुनिया में तो लोग मानते हैं कि बहनों में इतनी अक्कल नहीं होती, अनुभव नहीं होता है, परंतु बाबा ने विश्वास रखा, प्रेम और श्रद्धा के द्वारा बहनों को आगे रख करके बहनों के द्वारा ही विश्वविद्यालय का और विश्व परिवर्तन का कार्य कराया बाबा ने। ये भी बाबा की महानता है, बाबा की एक खूबी है कि बाबा ने जिसको लोगों ने समझा कि अक्कल नहीं, अनुभव नहीं है, काम के नहीं है, ऐसे माताओं को आगे रख करके उनके द्वारा ही विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बाबा के एक्सपेरिमेंट है कि बाबा ने दादियों के द्वारा, बहनों के द्वारा, कन्या माताओं के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य किया। बाबा हमेशा ही कहते थे कि ये कन्याएं माताएं जो बाहर चढ़ाएंगे उसके द्वारा ही भविष्य में सन्यासी महात्माएं जो भी है वो भी आपके चरणों में आ जाएंगे, आपके चरणों में झुक जाएंगे। और ऐसा ही होता है। गीता के भगवान के बारे में चर्चा हुई थी, हमारी उषा बहन जो है वो चर्चा करती थी, दिल्ली में फंक्शन था, श्लोक बोलते थे पंडित लोग, श्लोक बोलते थे, ये सब करते थे, परंतु बहनों को तो श्लोक आदि आता नहीं था। परंतु बहनों ने क्या कहा, बहनों ने कहा कि आपके गीता में लिखा हुआ है काम क्रोध लोभ ये सब तीन नरक का द्वार है, तो इसलिए आप काम को जानते हो, काम को काम पर जीत पाना चाहिए, विकारों पर जीत प्राप्त करना चाहिए, आपको आप थियरी जानते हो परंतु प्रैक्टिकल्स नहीं करते हो, जानते हो, तो इसके लिए आपको ये काम करने का है। और इसके कारण हमारी बहनों को आगे वो लोग झुक जाते, कहते हैं हम मानते हैं पंडिताई के रूप में मानते हैं, बाबा के ज्ञान की सबसे बड़े में बड़ी उपलब्धि यही है कि अभी तक भक्ति मार्ग में हम करते रहे, भगवान के श्री कृष्ण के श्री राम के इन सब की पूजा करते रहे, पूजा करते रहे और पूजा के द्वारा उनकी महिमा करते रहे, परंतु कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम ऐसे पूजा और पूजनीय बन सकते हैं। बाबा ने ये हमारे ज्ञान के अंदर यही फर्क है कि बाबा ने हमारे अंदर कृष्ण और राम जो है वो खाली पूजा के लिए लायक नहीं है, परंतु ऐसा लक्ष्य हमारे सामने रखा कि आपको पूजनीय बनना है, पूजनीय बनना है। तो ये पूजनीय बनने की जो बात जो है कि ताकि ये बात दुनिया के अंदर भक्ति मार्ग में आज तक हमने किसी से सीखी नहीं थी, खाली वहां तो पूजा करने के रूप में करते थे, पूजा के रूप में करके उनसे मांगना, शांति दो, प्यार दो, आनंद दो, ऐसे मांगने के रूप में बात होती थी। तो हम ऐसी चीजों के मालिक बन सकते हैं, ये बाबा ने ही सिखाया। तो इस प्रकार से बाबा मम्मा के जीवन की बातें तो बहुत है, 52 से अभी तक के जीवन के अंदर बाबा का जो अनुभव है इतना विशाल अनुभव है, तो सागर को गागर में समाना या तो सागर को बिंदु के रूप में समाना बहुत कठिन बात है। फिर भी एक घंटे का समय हमारी कुंती बहन ने मुझे दिया, तो इसके कारण अभी 12 बज रहा है, आगे का कारोबार भी होने वाला है, तो इसके लिए आप सब माताओं को और आपके अंदर रही हुई मातृशक्ति को वंदन करते हुए समाप्त करता हूँ मेरा कारोबार। ओम शांति।